आगे थी सूरत हशर, 59 नंबर की सूरा, 24 आयात हैं, मुसब्बिहात की सूरतों में से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। रुकू नंबर 4 है, आयत 1 से 10। अल्लाह ताला से डर के रहना है। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है। वो ग़ालिब बाहिकमत है। वही है जिसने अहले किताब में से कुफ़ार को इनके घरों से पहले हशर के वक्त निकाला। तुम्हारा गुमान भी ना था कि वो निकलेंगे, और वो ख़ुद भी समझ रहे थे कि इनके संगीन कले इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। बस इन पर अल्लाह का अजाब ऐसी जगह से आ पड़ा कि इन्हें गुमान भी ना था, और इनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया, और वह अपने घरों को अपने ही हाथों से उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों बर्बाद करवा रहे थे। यानी हमारे पास नहीं रहा तो तुम्हारे पास भी ना रहे। बस से आंखों वालों, इबरत हासिल करो, और अगर अल्लाह ने इन पर जिला वतनी को मुकद्दर ना कर दिया होता तो यकीनन इन्हें दुनिया में भी अजाब देता, और आखरत में तो इनके लिए आग का अजाब है ही। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की और इसके रसूल की मुखालफत की, और जो भी अल्लाह की मुखालफत करेगा तो अल्लाह भी सख्त अजाब वाला है। तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले, या जिन्हें तुमने इनकी जड़ों पर बाकी रहने दिया, ये सब अल्लाह के फरमान से था, और इसलिए भी कि फासिकों को अल्लाह ताला रुसवा करे। वो माल जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल के हाथ लगाया था, यानी माले फै, जिस पर ना तो तुमने घोड़े दौड़ाए हैं ना ऊँट, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह ने तुम्हारे लड़े भिड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए, वो अल्लाह का है, रसूल का, और कराबत वालों का, और यतीमों, मिस्कीन और मुसाफिरों का, ताकि तुम्हारे दौलतमंदों के हाथ में ही ये माल गर्दिश करता न रह जाए, और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। माले फै, इन महाजर मिस्कीनों के लिए जो अपने घरों और मालों में से निकाल दिए गए, वो अल्लाह ताला के फजल और इसकी रजामंदी के तलबगार हैं, और अल्लाह ताला और इसके रसूल की मदद करते हैं। यही रास्तबाज लोग हैं, और इनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना और ईमान में इनसे पहले जगह बना ली है, और अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और महाजरीन को जो कुछ दिया जाए इससे वो अपने दिलों में कोई तंगी महसूस नहीं करते, बल्कि खुद अपने नफ्स पर इनको तरजीह देते हैं, गो के खुद कितनी ही हाजत हो। बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया वही कामयाब और बामुराद है। और इनके लिए भी जो इनके बात आए, जो कहेंगे कि हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिलों में कीना और दुश्मनी ना डाल, ए हमारे रब, बेशक तू शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। ये था सूरत हशर का पहला रुकू। ये सूरत ग़ज़वे बनु नज़ीर से मुतलिक नाजिल हुई थी। सईद बिन जुबैर से ये रिवायत इब्ने अब्बास से मिलती है हमें, और बुखारी में आता है कि इसके जवाब में सूरत बनु नज़ीर है। सूरत को सूरत बनु नज़ीर भी कहते हैं, इसका नाम है, और बुखारी की रिवायत आप पढ़ लीजिएगा, 4882 है। सहाबा कराम को अल्लाह ने क्यों चुना? ख़ास तौर पर इस जंग में मुसलमानों को यहूद, जो उस वक्त में एक मजबूत गिरोह था, उसके मुकाबले में शिकस्त से बचाकर फतह क्यों दी? क्योंकि आपके पास सहाबा जैसा मजबूत गिरोह था, हिज़्बुल्लाह। आपकी टीम में सहाबा जैसे लोग थे, जिनकी खूबियां क्या थी कि वो अल्लाह पे नज़रें लगाते थे, यहूद से मरूब नहीं थे। सहाबा कराम यहूद के मुकाबले पे खड़े होने में कोई आर महसूस नहीं करते थे। नतीजतन अल्लाह उनके लिए काफ़ी हुआ। सहाबा ने सिर्फ अल्लाह पे नज़रें लगाईं, और अल्लाह ने इनको गालिब कर दिया, और बरसों के जमे जमाए कदम थे यहूद के, सहाबा के ज़रिए वो कदम मदीना से उखाड़ दिए गए, और इस कबीले को खरूज मिल गया। अल्लाह कहते हैं आंखों वालों के लिए इसमें इबरत है। बात यह कि अल्लाह दिलों पर इख्तियार रखता है, जिसका चाहे रोब डाल दे। मोहलत अमल ख़त्म होने पर अल्लाह की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता। फिर माल फै की बात है, वो माल जो बग़ैर जंग के मिले, यदि टैक्सेस और दूसरी सूरतों में या वैसे भी मिल जाता है जंग हुए बग़ैर। पहला मौका मुसलमानों का था कि जंग के बग़ैर माल मिला। यहूद के दिल में अल्लाह ने मुसलमानों की हैबत डाली। अल्लाह ने माल के खुद हिस्से बताए ताकि मिस्कीनों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। खुद बाँट कर अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर होने से बचा लिया। ये पूरा रुकू आपको, बल्कि सूरत ये वाली, इस्लाम की माली तकसीम बताती है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको जतुल बालिगा में बहुत डिटेल से किया। इस्लामिक इकोनॉमिक्स का नुस्खा, वर्सेस इकोनॉमिकल टेररिज्म, जो इस वक्त पूरी दुनिया पे छाई हुई है। बैंकों के फिगर्स और पढ़ पढ़ के बातें बताई इसमें कि अगर आज भी इस्लाम का ये कानून दुनिया को दे दें, यूएनओ को जाकर सूरत खशर की समरी दे दें, अल्लाह कहता है दौलत चंद हाथों में ना रहे, अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर ना हो जाए, पढ़ने के काबिल और सुनने के काबिल ये सूरत है। अभी तो हम अंसार मदीना की खूबियाँ देखते हैं। एक सहाबी अपने घर मेहमान को ले गया और ख़ुद भूखा रहा, अंधेरे में खाता रहा, मेहमान समझा कि मेरे साथी ने खा लिया, हालांकि वो भूखे थे। सुबह के वक्त अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हारे बारे में आयतें नाजिल कर दी, क्यों ऐसा कर लेते थे? इफ्तारी के वक्त आप किसी के साथ अपना समोसा शेयर कर सकते हैं, हो भी एक पकौड़ा है ही एक, कोई आ गया दूसरा रोज़ेदार, खजूर दे देंगे आप उसको, मुझे पता, वाटरमेलन भी दे देंगे, पकौड़ा नहीं देंगे। हाँ, पकौड़ा इस सूरत में देंगे कि उनके पास दो चार और चीज़ें रखी होंगी। लेकिन अब देखिए कि खुद भूखा रहना और दूसरों को खिलाना, आधी रोटी काट के दूसरे को देना तो पेट ज़्यादा भरता, आजमा ले पूरी रोटी खाने के बाद। तो खालिस दिल वाले थे, अपने हकूक महाजिर भाइयों की खातिर दस्तबरदार होने वाले थे, अपनी ज़ाती चीज़ महाजिर भाइयों पर कुर्बान करने वाले थे, खुद भूखे रह के महाजिर भाइयों का पेट भरने वाले थे। सहाबा कराम का दिल शुक से पाक था, इनके दिल में माल की हिरस नहीं थी। माल होना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड थिंग, पर माल की मोहब्बत और हिरस होना बहुत बुरी बात है। तंग दिल नहीं थे, वसीउल कल्ब थे और वसीउन नज़र थे। फिर बुखारी की रिवायत 2325 है, अंसार ने अल्लाह के नबी से कहा था कि हमारे बागात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में और हमारे मुहाजिर भाइयों में तकसीम फरमा दें। आपने इनकार किया तो अंसार ने मुहाजरीन से कहा कि आप लोग दरख्तों में मेहनत करो, हम तुम मेवे में शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा, अच्छा, हमने सुना और कबूल किया। यानी फल में से हिस्सा ले लिया था महाजरीन ने, लेकिन ओनरशिप उन्हीं की छोड़ दी, क्योंकि अगर अंसार के दिल खुले हुए थे ना, उन्होंने घरों के और दिलों के दरवाजे खोल दिए थे, तो महाजिर भी को भूखे नंगे नहीं थे कि उनके माल और घरों पर कब्जा करें, उनको परवाह भी नहीं थी उनके घरों की। तो क्या सीखा, अंसार और महाजिर बनना है। अल्लाह ताला के नबी जो दें, ये भी एक असूल है वो माताकुम रसूल में, कि जो बात कुरान से साबित होती है वो भी अगर लेते हो तो हदीस से साबित शुदा बात को भी ले लो। हुजियत हदीस है और इसमें हदीस सुनाई है मैंने रूहुल कुरान में, उम्मे याकूब वाली। अल्लाह ताला हमारे दिल भी खोल दे। फिर अल्लाह से डर के जीना है, अल्लाह का फजल चाहना है, अल्लाह की रज़ा चाहनी है और अल्लाह के रसूल की मदद करनी है। हिजरत करने वालों से मोहब्बत करना है, मुहाजरीन के लिए दिलों में तंगी नहीं रखनी, मुहाजरीन को अपने ऊपर तरजीह देनी है, बुखल से बच के रहना है, अहले ईमान के लिए इसार करना है, दिल में अहले ईमान के लिए बुग़्ज़ नहीं रखना। ये दुआ भी याद कर लीजिए, बहुत प्यारी दुआ है, कि अल्लाह हमारे दिलों में दूसरे मुसलमानों के लिए कीना ना आ जाए। रुकू नंबर 5, 11 से 17, टॉपिक है कुफर का अंजाम हमेशा की आग है। अलम तर इल्लज़ीना नाफ़क़ू, क्या तूने मुनाफिकों को नहीं देखा कि अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम जिला वतन किए गए तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ जाएंगे। अब्दुल्ला बिन उबई की झूठी तसल्लियाँ, और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात ना मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो बखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता कि ये कतन झूठे हैं। अगर वो जिला वतन किए भी गए और इनके साथ फिर भी ना जाएंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये इनकी मदद भी ना करेंगे, और अगर आप बिलफर्ज़ मदद पर आ भी जाएं तो पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे और फिर मदद ना किए जाएंगे। मुसलमानों, यकीन मानो कि तुम्हारी हैबत इनके दिलों में बनिस्बत अल्लाह की हैबत के बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए कि ये बेसमझ लोग हैं, ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते। हाँ, ये और बात है कि कला बंद मुकामात में हो या दीवारों की आड़ में हो, यानी तोपों के पीछे बैठकर उनके दिल की बुखल और बुजदिली बताई जा रही है। इनकी लड़ाई तो आपस में बहुत सख्त है, गो आप इन्हें मुत्तहिद समझ रहे हैं, लेकिन इनके दिल एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। इन लोगों की तरह जो इनसे पहले गुजर चुके, जिन्होंने अपने काम का वबाल चख लिया और जिनके लिए अलमनाक अजाब तैयार हैं, शैतान की तरह कि इसने इंसान से कहा कि कुफर कर, फिर जब वो कुफर कर चुका तो कहने लगा, मैं तो तुझसे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। सच बोल रहा है? आज भी बहुत सारे लोग यही झूठ बोलते हैं, अल्लाह से बड़ा डर लगता है। असल में एक स्लोगन है ना, लोग कहेंगे कितनी नेक हैं, इतनी नेकियां करके अल्लाह से डरती हैं, फिर लोग कहेंगे देखे ना, अगर आपको डर लगता है तो फिर हमारा क्या बनेगा भाई, आप आग में जाएंगी, फिर हम तो पता नहीं किधर जाएंगे। असल में ये भी एक मसनू तकवा होता है, अल्लाह बचा के रखे। बस दोनों का अंजाम ये हुआ कि आतिशे दोजख में हमेशा के लिए गए, और जालिमों की यही सजा है। क्या सीखा? रज़ा इलाही से पाने वाले काम, मुनाफ़क़त से बचना है, कुफर नहीं करना, कुफार की मदद नहीं करनी, अल्लाह से डर के रहना है, लोगों से नहीं डरना, समझ बूझ रखनी है, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें कुरान दे दिया। रुकू नंबर 6 आयत 18 से 24 सूरत का एंड है, और बहुत ही प्यारी आयात है। आलमोस्ट सारी ही आयतें आपने सुनी और पढ़ी भी होंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही, पीछे पढ़ा था, यहाँ क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वलतन्ज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। दो तकवे हैं इसमें, और बीच में क्या है ज़रा सुनिएगा। ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स देखभाल ले कि कल क़यामत के वास्ते इसने आमाल का क्या ज़खीरा भेजा है, और हर वक्त अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है, और तुम इन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया तो अल्लाह ने भी इन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया, और ऐसे ही लोग नाफरमान और फासिक होते हैं। यानी वो अल्लाह को भूले तो अल्लाह उनको भूल गया? नहीं, अल्लाह ने उनको अपनी जानें बुला दी। इसको कहते हैं खुदा फरामोशी, खुद फरामोशी है। तू मेरा नहीं बनता, अपना तो बन। ला यस्तवी असहाबुन नार वअसहाबुल जन्ना, अहले नार और अहले जन्नत बराबर नहीं है। दोनों का जीना फ़र्क, मरना फ़र्क, चॉइस फ़र्क, लाइफस्टाइल फ़र्क, पहनना ओढ़ना फ़र्क, खाने पीने का तरीका फ़र्क। हाँ, जो अहले जन्नत हैं वही कामयाब हैं, और जो अहले नार हैं वो नाकाम हैं। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छुपे खुले का जानने वाला, मेहरबान और रहम करने वाला। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह नहायत पाक, सब ऐबों से पाक, अमन देने वाला, निगेबान, गालिब, जोरावर और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह इन चीज़ों से जिन्हें ये इसका शरीक बनाते हैं। वही है अल्लाह पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला। उसी के लिए नहायत अच्छे नाम हैं। हर चीज़ ख्वाह वो आसमानों में हो या ख्वाह ज़मीन में हो, इसकी पाकी बयान करती है, और वही गालिब हिकमत वाला है। तो सूरत पूरी होती है इस पैगाम पे कि अल्लाह से डर के रहना है, आमाल की फ़िक्र करनी है, अल्लाह को भूल नहीं जाना, नाफरमान नहीं बनना। और मैसेज क्या है कि दिल को माल के हिरस से पाक करना है, दिल में अहले ईमान के लिए बुग़्ज़ और कीना नहीं रखना, हर वो हुक्म जिसे अल्लाह के नबी ने कुछ करने का हुक्म दिया वो करना है, और जिससे रोका उससे रुकना है, तंग नज़र नहीं बनना, अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देनी है। और मुहासवा, क्या मैं अहले ईमान के लिए दुआएं करती हूँ? क्या मैं ईसार और कुर्बानी का अमली नमूना हूँ? क्या मैं दूसरों पर अपना माल खर्च करने से तंग दिल होती हूँ? अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे। एक से एक खूबसूरत सूरत है, और पूरी सूरत में एक ख़ास मैसेज होता है। आप देखेंगे कि इन सारी सूरतों को पढ़ते वक्त आपको ज़रूर महसूस होगा कि सहाबा कराम हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन उन्होंने ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ किया। चलिए जी, सूरत मुमतहिना 60th नंबर की सूरह है, 13 आयात हैं। इसमें भी ख़ास तौर पे एक बैत का तذکرہ है जो कि मक्का से मुसलमान होकर आने वाली औरतों से दी जाती थी। साथ साथ चलेंगे आयतों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया औलिया तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दा वक़द कफ़रू। रुकू नंबर 7 है, आयत नंबर 1 से 6, अल्लाह की तरफ रजू करना है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मेरे और खुद अपने दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाओ। तुम तो दोस्ती से इनकी तरफ पैगाम भेजते हो, और वो इस हक़ के साथ जो तुम्हारे पास आ चुके हैं कुफर करते हैं। पैगंबर को और ख़ुद तुम्हें भी महज इस वजह से जिला वतन करते हैं कि तुम अपने रब पर ईमान लाओगे, या तुम अपने रब पर ईमान रखते हो। अगर तुम मेरी राह में जिहाद के लिए और मेरी रजामंदी की तलब में निकलते हो तो इनसे दोस्तियाँ ना करो। तुम इनके पास मोहब्बत का पैगाम पोशीदा भेजते हो, और मुझे खूब मालूम है जो तुमने छुपाया है और वो भी जो तुमने जाहिर किया। तुम में से जो भी इस काम को करेगा वो यकीनन राह रास्त से भटक जाएगा। अगर वो कहीं तुम पर काबू पा लें या तुम्हारे खुले दुश्मन हो जाएं और बुराई के साथ तुम पर दस्त दराजी और ज़ुबान दराजी करने लगें और दिल से चाहने लगें कि तुम भी कुफर करने लग जाओ, تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور جن جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرنے والے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات اپنے باپ سے ہوئی تھی، کیا میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں، یعنی کوشش کروں گا بس، باقی کام کرنا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روح گردانی کرے یا منہ پھیرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ یہ ہیں جی وہ آیات جو خاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، بدری صحابی تھے، ان کا واقعہ بخاری میں آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا، 3007 ہے۔ بیسیکلی جب اللہ کے نبی نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا ان کی وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی وجہ سے، تو آپ چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور خون خرابہ نہ ہو، خاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھ کر مکہ والوں کو بھیج دیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے دی کہ آپ کا یہ جنگی راز افشا ہو گیا۔ آپ نے صحابہ میں سے حضرت علی کو اور حضرت زبیر اور مقداد بن اسود کو، یعنی یہ تین لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھیجا کہ روضہ خاخ ایک جگہ ہے مدینہ سے 12 میل کے دور پہ، وہاں پہنچا ایک بوڑھی عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ لے آؤ۔ کہتے ہم چلے گئے، وہاں پہنچے تو واقعی عورت موجود تھی جو اونٹ پر سوار تھی۔ ہم نے کہا خط نکال، وہ مکر گئی، کہنے لگی میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ جب دھمکی دی کہ ہم تو تمہاری تلاشی لے لیں گے تو بالوں کے اندر گندا ہوا خط نکال کے دے دیا، خط نبی کے پاس آ گیا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ کھلی جنگی سازش تھی خاطب کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام، انہوں نے اللہ کے نبی کے اس بھید کی خبر دے دی جو کہ آپ چھپانا چاہتے تھے۔ آپ نے بلا کر پوچھا خاطب کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لیجئے گا، یعنی ڈونٹ ڈیسائیڈ اتنی کوئکلی، پہلے میری بات سن لے۔ کہتے کہ میری حیثیت مکہ میں یہ تھی کہ میں نے جس میں رہنا شروع کیا، میرے وہاں رشتہ دار نہیں تھے، یعنی یہ باہر سے آئے ہوئے تھے، تو دوسروں کی تو رشتہ داریاں بھی ہیں، ناطے بھی ہیں، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ ان کو نہ پکڑ لیں، تو میں نے ایک قسم کا ان کے اوپر ایک احسان کیا ہے، کفر یا ارتداد نہیں ہے میرے دل میں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ جائیں گے تو جیتیں گے آپ۔ یہ بھی ان کا ایمان ہے کہ میں خط دے بھی دوں گا نا، پھر بھی دیکھے گا اللہ نے آپ کی بات پوری کرا دینی ہے، اس کو ایمان بے رسول کہتے ہیں۔ حضرت علی کا ایمان اور باقیوں کا دیکھے تو بہرحال اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے ذرا سا ریئیکشن شو کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں، چھوڑ دو ان کو، کیا پتہ چلا کہ جو بڑے کام کرتے ہیں ان کی غلطیاں بھی درگزر کی جاتی ہیں۔ کیا سیکھا؟ اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب رکھنی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، بخشش کی دعائیں مانگنی ہے، اور آخرت کا امیدوار بننا ہے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 7 سے 13، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہے، آخری رکوع ہے سورت کا۔ اصلاح یجعل بینکم، کیا عجب کہ ان قریب اللہ ہی تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ نوٹ کیا آپ نے؟ دشمنوں سے بھی محبت کی امید ہے، آپ تو دوستوں سے بگاڑے بیٹھے ہیں۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے، منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس سے نکالا، اور دیس سے نکال دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت رکھیں وہ قطن ظالم ہیں۔ یا ایو الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، बस अगर वो तुम्हें ईमानदार मालूम हो तो अब तुम इन्हें कुफार की तरह वापस ना करो, ये इनके लिए हलाल नहीं और ना वो उनके लिए हलाल है। और जो खर्च इन कुफार का हुआ हो वो इन्हें अदा कर दो, और इन औरतों को इनके मेहर देकर इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। और काफिर औरतों की नामूस अपने कब्जे में ना रखो, और जो कुछ तुमने खर्च किया हो वो भी मांग लो, और जो कुछ इन कुफार ने खर्च किया हो वो भी मांग लें। ये अल्लाह का फैसला जो तुम्हारे दरमियान कर रहा है, अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और कुफार के पास चली जाए, तो फिर इसके बदले का वक्त मिल जाए तो जिनकी बीवियाँ चली गई हैं उन्हें इनके खराजात के बराबर अदा कर दो, और इस अल्लाह ताला से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ऐ पैगंबर, ते मुसलमान औरतें आपसे इन बातों की बैत करने आएँ कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मारेंगी, और कोई ऐसा बोहतान नहीं बांधेंगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने कर लें, और किसी नेक काम में आपकी हुक्म अदूली ना करेंगी तो आप इनसे बैत कर लिया करें, और इनके लिए अल्लाह ताला से मगफरत तलब करें, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। ऐ मुसलमानों, तुम इस कौम से दोस्ती न रखो जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो चुका, जो आखरत से इस तरह मायूस हो चुके हैं जैसे कि मुर्दा अहले कब्र से काफिर नाउमीद हैं। क्या पता चला? हज़रत असमा से एक रिवायत है कि उनके पास इनकी मुशरिक माँ आई। यूँ ज़माने का जिक्र था जब अल्लाह के नबी और मुशरिकीन के दरमियान में सुलह हुदैबिया हो चुकी थी। हज़रत असमा ने आके मसला पूछा कि मेरी वालदा आई हैं, वो दीन से अभी तक अलग हैं, क्या मुझे जायज़ है कि उनसे सुलह रहमी करूँ? तो आपने फरमाया, हाँ जाओ इनसे सिला रहमी करो। बुखारी की रिवायत है 2620। क्या सीखा? इंसाफ करना है, अल्लाह से डर के रहना है, शिर्क नहीं करना, चोरी नहीं करनी, बदकारी नहीं करनी, और औलाद का कत्ल यानी अबॉर्शन नहीं करना, मारूफ कामों में नाफरमानी नहीं करनी, अल्लाह ताला से दुआ मगफरत करनी है, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है इनको दोस्त नहीं बनाना, इस्लाम दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करनी, आखरत से नाउमीद नहीं होना, अल्लाह ताला फैसले करने वाला है इस पर ईमान रखना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। बड़े सख्त इम्तिहान है। आप में इन सूरतों को पढ़ रहे हैं, बस उस दौर में गुजरे थे। आप इनकी जब तफसीर पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि रदी अल्लाह अन्हो का लक़ब उनको मिलना चाहिए था। आगे जी सूरत सफ़, और सफ़ ऑर्गेनाइजेशन की दलील है। पीछे सवाफात पढ़ चुके, 23rd पारे में सूरह यासीन के बाद स्वाद सवाफात दोनों सूरतें आई थी। यहाँ क्या पता चलता है कि अपने आप को इस चीज़ के साथ रखिए कि हमने ऑर्गेनाइज होना है और बेहतरीन तरीके से रहना है। चलिए सूरह सफ़ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 61 नंबर की सूरह है, 14 आयात हैं, और सफ़ से ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ही प्यारी टीम बिल्डिंग कायम करने वाली सूरत है। उम्मत मुस्लिमा का जो मनहज है वो इसमें दिखता है। और इस आयत के बारे में एक रिवायत आती है कि सहाबा किराम एक दिन बैठे आपस में तस्करे कर रहे थे कि कोई जाए और अल्लाह के नबी से ये पूछा है कि सबसे महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक कौन सा है, मगर कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हमारे पास अल्लाह के नबी का कासिद पहुँचा, हम में से एक एक को बुलाकर अल्लाह के नबी के पास ले गया। जब हम सब जमा हो गए तो आपने इस पूरी सूरत की तिलावत की। सुबहान अल्लाह। ये तफसीर इब्ने अब्बास की रिवायत है। तो आज आपको पता चलेगा कि सहाबा के मुज़ाकरे और उनकी खुशगपियाँ क्या थीं, वो इस सूरत में आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि वाकई आज दीन को सूरत सफ़ की रोशनी में रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। रुकू नंबर 9 है, आयत नंबर 1 से 9। दीन को गालिब करने की कोशिश करनी है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन व आसमान की हर हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है, और वो ही गालिब हिकमत वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं, और तुम जो करते नहीं इसका कहना अल्लाह को सख्त नापसंद है। बेशक अल्लाह ताला इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में सफ बस्ता जिहाद करते हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई इमारत हैं। और याद करो जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे क्यों सता रहे हो, हालांकि तुम्हें बखूबी मालूम है कि मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल हूँ। बस जब वो लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ने इनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया। जी, जैसा बंदा होता है अल्लाह उसको वैसा कर देता है, और अल्लाह ताला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता, और जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम बनी इसराइल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे पहले की किताब तौरात की मैं तस्दीक करने वाला हूँ, और अपने बाद आने वाले एक रसूल की मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम अहमद है। हाईलाइट कीजिए आयत नंबर 6 को। कोई पूछता है कि पिछली किताबों में कहाँ लिखा था कि अल्लाह के नबी आएंगे, तो ये यहाँ लिखा है, आप इसका रेफरेंस अलग से लिख लीजिए। फिर जब वो इनके पास खुली दलीलें लाए तो वो ये सब कहने लगे, ये तो खुला जादू है, इस शख्स से ज़्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है, और अल्लाह तआला ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं करता। वो चाहते हैं अल्लाह के नूर का अपने मुँह से बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुँचाने वाला है। गो काफिर बुरा माने, वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि इसे और तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकीन नाहोश हों। मुनाफ़िकत की 4 निशानियाँ आपने आयत 3 में पढ़ी, झूठ बोलना, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना, वादा पूरा न करना, बद कलामी और फुहश गोई करना। ये सही मुस्लिम की रिवायत 26 है। आपने मैंने इन आयत के बाद क्या अमल करना है? वो बात नहीं कहनी जो करते नहीं, अल्लाह की राह में सफ बस्ता होकर लड़ना है, रसूलों का पैगाम देने वालों को अजियत नहीं देनी, ना फरमान नहीं होना, अल्लाह तआला की रोशनी को अपने मुंह की फूकों से बुझाने की हकीकत को समझना है, दीन को गालिब करने की कोशिश करनी है। अल्लाह हमें आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, और आगे एक तिजारत करनी है अल्लाह से, जिसका तذکرہ है रुकू नंबर 10 आयत नंबर 10 से 14, आखिरी रुकू है सूरत सफ का। अल्लाह से तिजारत करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम, ए लोगों जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बतला दूँ जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा ले, और अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, और तुम्हें इन जन्नतों में पहुँचा देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और साफ़ सुथरे घरों में जो जन्नत अदन में होंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वो अल्लाह की मदद और जल्द फतशाबी है। ईमानदारों को खुशखबरी दे दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह ताला के मददगार बन जाओ। अल्लाह के मददगार, हाँ मुराद अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। जिस तरह हज़रत मरियम के बेटे हज़रत ईसा ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने, क्या पता चला कि वक्त का रसूल ही क्यों ना हो, उसको भी इस्लाम के काम के लिए मददगारों की ज़रूरत होती है। और अगर आज ये पुकार आपको लगे तो कौन हाथ खड़ा करता है, कौन अंसारुल्लाह बनना चाहता है? और आपको पता है कि अंसारुल्लाह बनने का बेहतरीन तरीका क्या है? कोई डिग्री लेनी पड़ती है, कोई कोर्स करना पड़ता है, स्टूडेंट बनना पड़ता है। तालिब इल्म ना हो, तलब ही नहीं है, तो देने वाला क्या देगा, और एडमिन्स क्या करेंगे? अल्लाह सबको अंसारुल्लाह बना दे। तो क्या कहा हज़रत ईसा ने, मन अंसारी अल्लाह, कौन अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह की राह में मददगार हैं। बस बनी इसराइल में से एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने कुफर किया, तो हमने मोमिनों की इनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की, बस वो गालिब आ गए। तो ये थी जी हल अदुल्लुकुम, तिजारत, नफा बख्श तिजारत, ईमान बिल्ला, ईमान बे रसूल, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह। और आपने भी अपने लिए इस तिजारत का फ़ैसला करके अपने लिए फ़ायदा किया, सारी इन्वेस्टमेंट आपके घर जाएगी, सारा प्रॉफिट आपको मिलेगा, एक पाई पैनी किसी और को नहीं मिलेगी सिवाय उसके जिसका आप सदका जारी है। उन लोगों का आपने शुक्रिया अदा करना है जिनके कहने पे आप दौरे कुरान में आए, और उनका भी आप बाद में शुक्रिया अदा करेंगे जिनकी मोटिवेशन और जिनके कहने पे आप अगले कोर्सेज करेंगे, स्टूडेंट बन जाए। मुझे आपसे बस ये चाहिए, कोई शुक्रिया का लफ्ज़ नहीं, कोई एक फूल ना लाए, कोई मिठाई ना लाए, कोई लड्डू पेड़े ना लाए, खुद लेके खा भी लें, लेकिन इस कुरान को पढ़ लें। क़यामत के दिन मैं कह सकूं कि अल्लाह मेरी बात पे भी किसी ने अमल किया, बस ये करना है आपने। मैंने क्या सीखा इस रुकू से? अल्लाह की राह में माल देना है, जिहाद करना है, जान देकर जिहाद करना है, वक्त दे के जिहाद करना है, अपनी ख्वाहिशात छोड़ के जिहाद करना है, अल्लाह रसूल पर ईमान लाना है, और अल्लाह के रास्ते का मददगार बनना है। तो सूरत सफ का पैगाम क्या है? اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر چلو. کانم بنجانم مرسوس. سیسا پلائی دیوار. اجتماعی کاموں میں میری خامیاں اور آپ کی خوبیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ لکھ کے رکھ لیں. اس دیوار کے پیچھے, پینٹ کے پیچھے کوئی اینٹ چھوٹی تھی کوئی بڑی تھی, چھپ گئی. اوپر سے وہ ردہ پھیرا تو پلین کر دیا. ہم میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں, ٹیم میں ہماری خامیاں چھپ جاتی ہیں اور ایک کا چھکا سب کی جیت. چھکا ایک لگاتا ہے, ورلڈ کا پوری ٹیم کو مل جاتا ہے, پورے ملک کا نام روشن ہوتا ہے. تو سورت صف کیا سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر چلنا ہے, اللہ کا مددگار بننا ہے اور دین کے غلبے کے لیے قرآن کا علم لینا ہے. محاسبہ بھی کر لیجئے کہ کیا میں اللہ کی راہ میں صف بستہ کھڑے ہونے کا ارادہ کر چکی ہوں. انسانوں سے جو عمارتیں بنتی ہیں نا, وہ لکڑی پتھر چونے سے بنی ہوئی عمارتوں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. کھڑی کھڑی عمارتیں پڑی ہیں, فارغ لوگ ہی نہیں ہیں. اور لوگ موجود ہیں تو عمارت نہیں, تو عمارتیں تو اللہ دیتا ہی دیتا ہے. کیا میں جو کہتی ہوں وہ کرتی ہوں؟ کیا میں نے بے مقصد زندگی سے توبہ کر لی ہے؟ اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.